हमदी साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले तक मुसलमानों में एक खिलाफत रही थी, चाहे वो ऑटोमन्स हो या अब्बासी हो, तो उसके बाद से खिलाफत बाय डिज़ाइन या जो भी वेस्ट ने अरेबियन पेंसुला में जो भी किया, और खिलाफत उसके बाद ख़त्म हो गई। तो हम देख रहे हैं तब से मुसलमान एज एक जो कौम है उन पे काफ़ी सख्ती आ रही है। तो ये खिलाफत की अब क्या इम्पोर्टेंस एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, और आया आपके ख्याल में वो अब नेशन स्टेट्स जो आ गई हैं तो उसमें फ्यूचर में क्या अब खिलाफत की इंपॉर्टेंस रह जाएगी मुसलमानों के लिए, वो कभी आएगी भी कि नहीं?
ये जो आपने फरमाया कि मगरबी मुल्कों ने छीन ली, कोई किसी से नहीं छीनता। असल में जब कोई कौम इसकी अहल नहीं रह जाती तो उससे हुकूमत छिन जाती है। खिलाफत का क्या मतलब था? खिलाफत का मतलब यह था कि मुसलमानों की एक मरकज़ी हुकूमत कायम है। ये मरकज़ी हुकूमत पहली जंग अजीम से बहुत पहले अपने आप को समेट चुकी थी। आपके इलम में है कि मुग़ल उसका हिस्सा नहीं थे। आपको मालूम है कि मशरक़ के बईद के ममालिक में उसकी अमलदारी नहीं थी। तो ऐसा नहीं कि वो सारी दुनिया में थी, असल में वो एक तारीखी तसलसल का नाम था कि इससे पहले मरकज़ी सतह पर जब शुरू शुरू में मुसलमानों ने खिलाफत राशिदा के बाद अपना नज़म कायम किया तो बनू उमैया की हुकूमत कायम हो गई, तो उसको उमवी सल्तनत कहा जाता था, उमवी खिलाफत भी कह लिया जाता था। ये कोई दीनी असलाह नहीं है, खिलाफत सल्तनत हुकूमत ये बिल्कुल सेकुलर अल्फाज हैं और ऐसे ही बोले जाते हैं जिस तरीके से आप आज के ज़माने में बोलते हैं। फिर बनू अब्बास की हुकूमत कायम हो गई। दिलचस्प बात यह है कि उसी ज़माने में, यानी जब बनू अब्बास की हुकूमत कायम हो रही थी, तो मुसलमानों की दो बड़ी खिलाफतें कायम हो गई, एक अंदलुस में और एक बगदाद में, दोनों पैरेलल कायम रहीं और आपके इलम में है कि कई सौ बरस तक कायम रहीं, और अब बड़े फ़ख्र के साथ हम उनका तज़किरा भी करते हैं। तो इसलिए ये महज एक तारीखी वाकया था कि मुसलमानों के यहाँ एक बड़ी हुकूमत कायम हुई जिसके तहत बहुत से ममालिक थे, वो एक सिम्बॉलिक तरीके से, अलामती तरीके से मुसलमानों की खिलाफत समझी जाती थी। वक्त के साथ उसको ख़त्म होना था, इसलिए कि अगर आप अपने आप को कायम नहीं रख सकते एक जगह के ऊपर अपने इल्म के लिहाज से, अपने अमल के लिहाज से, अपने अखलाक के लिहाज से, तो दुनिया में किसी चीज़ की ज़मानत नहीं दी गई। अल्लाह ताला ने जो कायदा बयान किया है वह यह है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनुन्नास, यानी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ये तारीख का पहिया चलाते रहते हैं, इसमें कौमें आती रहती हैं, कौमें जाती रहती हैं। तो एक ज़माना था कि जब अरबों को बड़ा मकाम हासिल हुआ, उसके बाद वो ज़माना आया जब तुर्कों को बहुत बड़ा मकाम हासिल हो गया। आपके लिए शायद ये बायस ताज्जुब हो कि ये तुर्क कौन है, ये याजूज माजूज है, यानी असल में गोग मैगोग का या याजूज माजूज का खुरूज तुर्कों से शुरू हुआ है, वो मुसलमान हो गए तो इस वजह से हमें कुछ ताज्जुब नहीं होता कि क्या हुआ है। तो ये सब खिलाफत की कंटिन्यूटी जिसको आप कहते हैं वो उस ज़माने की सल्तनतें हैं। बरतानिया उज़्मा की सल्तनत अभी तक जारी है, यानी इस वक्त भी मलका बरतानिया अलामती तौर पर ही सही वो कैनेडा की भी हुक्मरान है, ऑस्ट्रेलिया की भी हुक्मरान है। तो सल्तनतों का एक दौर रहा है। अरबों की सल्तनत के लिए खिलाफत का लफ्ज़ इख्तियार किया गया, इसका कोई मजहबी पहलू नहीं है। अब रह गई ये बात कि क्या इस्लाम हमको ये पाबंद करता है कि दुनिया में हमारी एक हुकूमत होनी चाहिए? ये आपके हालात पर है, आप कौमी सतह पर कहाँ खड़े हैं, आपकी क्या हैसियत है। कदीम ज़माने में इतने बड़े बड़े इलाकों में जब सल्तनतें कायम हो जाती थी तो उसकी वजह क्या होती थी? उसकी वजह ये थी कि फातहीन का दौर था, फतूहात की जाती थी, और जिस तरह के बरतानिया उज़्मा की सल्तनत कायम हो गई, जिस तरह इससे पहले रूमी सल्तनत कायम हो गई, तो आम तौर पर ये ताकत थी या तलवार थी जिसके ज़रिए से ये सल्तनतें कायम होती थी, बड़ी बड़ी कायम हो जाती थी। यानी मुग़ल यहाँ पे आके रेफरेंडम करा के तो हुक्मरान नहीं बने थे। इसी तरह ईरान में सफियों की हुकूमत कायम हुई तो वो कोई लोगों की मर्ज़ी से कायम नहीं हुई थी, बल्कि उस वक्त तो ईरान में जिस नुक्ता नज़र के वो हामिल थे उसके बरखिलाफ़ लोगों की अक्सरियत थी, इसके बावजूद हो गई, क्योंकि बड़े हुक्मरान आते थे या बड़े फातहीन आते थे, पता कर लेते थे। तो मुसलमानों के यहाँ भी ये एक तारीखी अमल है जो इस तरीके से जारी रहा, इसका कोई मजहबी पहलू नहीं है। हम इस वक्त कौमी रियासतों के दौर में जी रहे हैं। कौमी रियासतें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस पर अलग से बहस हो सकती है, लेकिन ये मजहब का मसला नहीं है। मसलन कौमी रियासतों के मामले में मुझे दो चीज़ों पर सख्त एतराज़ है। एक ये कि आप लोगों की नकल मकानी पर पाबंदी लगा रहे हैं, ये आपको कोई हक नहीं। खुदा की ज़मीन सब इंसानों के लिए है। नकल मकानी करना यानी एक मुल्क को छोड़ना दूसरे मुल्क में चले जाना, ये उसूल की बात यही है कि हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, तो इस वजह से किसी को भी हक नहीं, ये इंसान के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि वैसा करें। मैं ये भी पसंद करता हूँ کہ ان قومی ریاستوں کی جگہ پر ایک عالمی ریاست کی طرف انسان بڑھے تاکہ غریبوں کا کچھ بھلا ہو. جس طرح کے اخراجات ہم بم بنانے پر اور اس طرح کی فوجیں رکھنے پر کر رہے ہیں وہ اخراجات نہ ہوں, یہ اچھی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ مذہب نے کسی چیز کا پابند کر دیا ہے, بالکل پابند نہیں کیا. یعنی آپ چاہیں تو ایک حکومت قائم کر لیں, بہت اچھی بات, مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی اگر ریاست ہے متحدہ اسلامیہ کوئی قائم ہو جائے. لیکن یہ کوئی مذہب کا مطالبہ ہے اس طرح ہی کوئی بات نہیں. یہ قائم کیسے ہوتی ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کسی قوم کی علمی برتری سے قائم ہوتی ہیں. اس علمی برتری کا ظہور اس سے پہلے تلوار میں ہوتا تھا, اب بھی اسی میں ہوتا ہے. یعنی آج بھی جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں ان کے یہاں ان کی علمی برتری جب تک بندوق کی طاقت میں نہیں ڈھلتی اس وقت تک نہیں قائم ہوتی. تو یہ اس کا سادہ اصول ہے, اس کو مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے.